रात का क्लास चल रहा था, उन्नीस नौ चौसठ शनिवार, ग्यारह पेज के अंत में बात चल रही थी कि मैं तुमको चिट्ठी लिखूं या मैं बाबा के साथ योग लगाऊं। तुमको चिट्ठी लिखूंगा तो हमको तुम याद रहेंगे, बाबा की याद कट हो जाएगी, फिर हमको क्या करना पड़ता है। बाबा बन करके चिट्ठी लिखाऊंगा, इसमें बुद्धि का काम बहुत चाहिए। बहुत समझ चाहिए। जानते भी है कि बरोबर मौत सामने है, उसके पहले ही बाप से अपना पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि पूरा वर्षा कोई पीछे नहीं मिल सकता है। पूरा वर्षा मिलेगा ही उनको जो कर्मातीत अवस्था में मेहनत करके टिकेगा, अर्थात बाप को भी याद करेंगे और सर्विस भी करेंगे। क्या कहा? मना सिर्फ याद नहीं, सिर्फ योगी नहीं होना है, कर्म योगी चाहिए। और कर्म भी कैसा हो, जिस कर्म से सेवा होती हो। तो पूरा वर्षा लेने वाले सर्विस भी करेंगे और बाप को याद भी करेंगे। सर्विस के ऊपर भी तो मदार है ना, किस बात का है, पूरे वर्षे का, ऊंचा पद पाने का, वो समझाते भी है। तो तुम कहते हो कि कर्म बंधन है, कर्म बंधन है, कर्म बंधन। परंतु कर्म बंधन करते करते एक ही थप्पड़ से हार्ट फेल हुआ, मर गए। फिर कहां गया तुम्हारा कर्म बंधन? यहाँ तो तुम बच्चों को राय देते हैं कि तुम जीते जी बाप की गोद में जाते हो, कौन तुम और ये ब्रह्मा जीते जी बाप की गोद में जाता है या नहीं जाता है? जाता है, जीते जी हार्ट फेल हुआ और क्लास हाँ, मर के तुमको कोई काल नहीं खाता है, तुम तो खुशी से अच्छी तरह से देखभाल और पूछताछ करके तब तुम इन बाप को स्वीकार करते हो। कैसे कहा है? इस बाप को तुम कैसे स्वीकार करते हो, कब स्वीकार करते हो? कोई के कहने मात्र से स्वीकार कर लेते हो क्या? कैसे करते हो स्वीकार है? कोई ने साप्ताहिक कोर्स दिया तो तुम स्वीकार कर लेते हो? संदेश मात्र दिया तो स्वीकार कर लेते हो है? नहीं। अच्छी तरह से देखभाल और पूछताछ करके तुम इस बाप को स्वीकार करते हो। जब निश्चय होता है कि बरोबर ये वही बेहद का बड़ा बाबा है, कौन सा बाबा है? बेहद का बड़ा बाबा। तो छोटा बाबा कौन है? जिस बड़े बाबा से हमको सृष्टि का बड़ा पद मिलता है, राजधानी का पद मिलता है। अभी ऐसे तो नहीं है कि बाबा कहने से कुछ बात मीठी हो जाती है। बात मीठा होता है, मुख मीठा होता है जब नशा चढ़ता है कि हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। हम बहुत पदमपति बनने वाले हैं और यहाँ इस दुनिया में तो कोई ऐसे साहूकार है ही नहीं। सिर्फ बात ये है कि दूसरे जन्म से लेकर के सो भी फिर मनुष्य कहते हैं कि दूसरे जन्म में क्या होगा, जो कुछ इस दुनिया में काला मुंह करना है सो कर लो। पहले अच्छी तरह से ये तो कर लो। तो वो समझते हैं कि पता नहीं वहां काला मुंह करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो वो इतने मूर्ख बुद्धि हैं, समझते भी हैं कि गोरा बनना है। बाबा काला मुंह वालों को गोरा मुंह बनाते हैं, परंतु ये समझते हुए भी देखो, क्योंकि सन्यासियों के लिए कोई काले और गोरे का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। ये बात तो तुम्हारे लिए है, तुम गोरे थे अभी सांबरे बन गए हो। सिर्फ तुम भारतवासियों के लिए ये बात है। क्या बात? गोरे भी बनते हो तुम, काले भी बनते हो, और दूसरे धर्म वाले है? इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन तो काले ही काले, उनके तो गोरे होने का सवाल ही नहीं। क्यों? गोरे होने का सवाल क्यों नहीं पैदा होता? क्योंकि उनको बेहद का बाप गोरा वाम बनाने वाला मिलता ही नहीं। मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, वो मूढ़ आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर नरक की दुनिया में ही आकर के जन्म लेती है। तो देखो वही जो कल्प पहले बने थे वही आकर के फिर ब्राह्मण बने। ब्राह्मण पने से चलते चलते फिर अगर शूद्र कुल में चला गया तो फिर ये मरा, क्योंकि ब्राह्मण कुल से जाकर के हमको फिर दैवी कुल में जाना है। आगे बढ़ना है या पीछे हटना है? ब्राह्मण कुल में आकर के कोई पीछे नहीं आता, परंतु माया बड़ी प्रबल है। अच्छे अच्छे बुद्धिमान की भी झट टाकी फिराई देती है। माया ऐसी है, नहीं तो तुम बच्चों को एक तो खुशी रहनी चाहिए, जैसे बाप है आनंद का सागर। क्यों है आनंद का सागर? क्योंकि वो हमको आनंद का ही वर्षा देते हैं। देने वाला कैसा होगा? जैसा होगा वैसा ही वर्षा देगा ना। लौकिक बाप क्या वर्षा देते हैं? है विकारों का वर्षा देते हैं। तो कैसे होते हैं? विकारी होते हैं, विकारों का वर्षा देते हैं। और बाप आनंद का सागर है, तो वो आनंद का ही वर्षा देते हैं। तब उनके ऊपर नाम पड़ा है कि हमको बहुत आनंद देते हैं। देखो कोई भी आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ शांति और आनंद बहुत मिलता है। इस समय में जो शांति और आनंद मिलता है वो फिर अविनाशी हो जाता है। परंतु है सब अभी की बात। बाप तो आते हैं पुरुषार्थ कराने, तो जो करते हैं वो कोई छिपे नहीं रहते हैं। जो सर्विस पर उपस्थित रहते हैं वो छिपे नहीं रह सकते। क्यों है? वो सर्विस ही करते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने की। तो जो बाप को प्रत्यक्ष करने की सर्विस करते हैं, बाप फिर उनको प्रत्यक्ष कर ही देता है, छिप नहीं सकते। उनको सर्विस वगैरह बैठने का सुख नहीं आता है। अगर बैठेंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डाल देंगे। सौदागर अगर चुप होकर बैठ जाएगा तो फिर क्या कमाई कर सकेंगे? जो बाप का टाइटल है वो तुम्हारा भी है। ऐसे नहीं है कि तुमको बाबा जादूगरी नहीं सिखलाते हैं, बरोबर तुमको भी सिखलाते हैं। तुम खुद भी जानते हो, कहते हैं ना कि ये बाबा है और ये हमारा बच्चा भी है, तो ये जादूगरी हो गई ना। भले बाबा की मदद मिलती है हर बात में, बाकी ये तो बच्चे जानते हैं कि सबसे अच्छा मंदिर है ही सोमनाथ का। क्या क्यों? सबसे अच्छा मंदिर क्यों बताया है? नाम क्या दिया? किसका नाथ? सोम का नाथ। सोम माने चंद्रमा का नाथ। कैसे नाथा? अरे बैल को नाथ डालते हैं ना, तो कैसे ना था? है सोमरस पिला की नाथा ना, तो ये जादूगरी है ना, ये कारीगरी है। मनुष्य से देवता बनना ये कारीगरी है, है? क्या क्या कारीगरी बताई? मनुष्य से देवता बनना कारीगरी है, और सोम क्या था? है मनुष्य था, बैल था, तो नेपाल में कौन प्रसिद्ध है? पशुपतिनाथ प्रसिद्ध है। तो पशुपति भी है, कारीगर के ये मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में कितनी कारीगरी है, बरोबर नीचे मंदिर में मनुष्य राजयोग में बैठे हैं, और ऊपर ऊपर में राजाई खड़ी हुई है। कितना सिंपल है समझने का, जो तुम जाकर कोई को भी समझा सकते हो। 1964 की वाणी का रात्रि का दूसरा पेज, वहां मंदिर में तुम सर्विस करो तो बहुत समझा सकते हो। तुम बिगर तलब कोई मंदिर के पंडे बन जाओ एकदम, क्या बिगर तलब बना बिना पेमेंट के? वो ब्राह्मण लोग तो तलब लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं ना। तुम एक पैसा भी न लो, क्योंकि यही मंदिर है खास, और कोई भी मंदिर नहीं है। जगदम्बा के मंदिर में इतना मजा नहीं है, ये तो एकदम जैसे यहाँ के यहाँ है, झाड़ के नीचे तुम बैठे हो, और वो भी बैठे हैं, और ऊपर में देखो उन बच्चों को तो कुछ भी पता नहीं है। मंदिर भले कई देखे हैं, ये नहीं देखा है, परंतु तुम्हारे में से शायद कोई देख कर गए हो, नेम नहीं है, कुछ पता नहीं था। अभी तो हूबहू तुम्हारी सर्विस का वो यादगार बना हुआ है, वंडर है कि तुम्हारा स्थान, मंदिर भी सामने है। और ये भी तो विचित्र बात हुई ना, समझाने के लिए भी बहुत सहज है। वो किताब निकाला भी है कि वो जड़ है, और यहां तुम चैतन्य में बैठे हो, परंतु यहां कोई भी वो किताब बांटने वाला नहीं है। यहाँ भी सर्विस करने वाला कोई है नहीं, बहुत सर्विस है। अच्छा, इस समय में भी कोई जाकर के उनको किताब देवे तो भी कुछ उनको समझ में आवे। वहां का जो बड़ा है उनको भी बैठ करके कोई अच्छे तरह से समझावे और बुद्धि में बिठावे, तो बेचारा वो भी कोई को समझा के कुछ दे कि अरे भाई ये तो मंदिर है जड़, और चैतन्य ये जड़ यादगार है, असली तो चैतन्य होता है ना। तो जरूर पुजारी सो पूज्य तो संगम होगा ना, पूज्य बनने वाले भी होंगे और जिसकी पूजा करते हैं वो भी होंगे, क्योंकि पुजारी सो पूज्य बनने वाला है तो पुजारी जरूर पूज्य की सेवा करते होंगे, बंदगी करते होंगे, दोनों संगम पर इकट्ठे जरूर होंगे, क्योंकि सतयुग में तो कोई पुजारी होता नहीं है। तो पूज्य बनने वाले हैं वो है पूज्य, परंतु वो पूज्य बनने वाले तो संगम में होंगे ना। तो देखो संगम पर तुम बैठे हो और वो तुम्हारे पूज्य के चित्र हैं और तुम हो पुजारी, तुम बरोबर इन सब के पुजारी थे, देवियों के भी पुजारी थे, अभी तुम सुखुद बन रहे हो। तो ये भी विचित्र बात है कि तुम बैठे हुए हो परंतु यहाँ समझाने वाली सर्विस करने वाली कोई है नहीं। कोई सर्विस करने वाली नहीं, कोई को सर्विस करने का ढंग ही नहीं आता है, क्योंकि अंधे को दिखलाना तो होता है ना, बुद्धिहीन अंधे जाते हैं अंदर और तुम उनको जाकर के बुद्धि देते हो तो बेचारे वंडर खाएंगे, बोलेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बोलते हैं, घुसना चाहिए अंदर, जाना चाहिए। बिगर पैसे तुम सर्विस कर सकते हो, वो पंडित तो पैसे लेते हैं तब मंदिर में समझाने जाते हैं, उनको सबकी बायोग्राफी तुम बता सकते हो, परंतु इतने कोई सर्विसेबल बच्चे हैं नहीं। बाप तो डायरेक्शन देंगे ना, अभी ऐसी जगह में मम्मा तो नहीं जाएगी, बाप दादा भी नहीं जाएंगे, जाएंगे तो बच्चे ही, परंतु इतना बच्चों में शौक नहीं है, इतना विशाल बुद्धि वाला अगर कोई होता भी है तो पिछाड़ी में ग्रहचारी भी तो होती है ना, कमाई में ग्रहाचारी बहुत होती है, कभी अवस्था को अच्छा देखो, कभी मध्यम देखो, कभी कनिष्ठ देखो, फिर कभी बहुत अच्छी देखो, तो वो ग्रहाचारी भी बहुत आती है। युक्तिबाज चाहिए, रमजबाज चाहिए इस सर्विस में, देखो इसलिए बाप को भी रमजबाज कहते हैं ना, तो आकर के शक्तियों को रमजबाज बनाते हैं, मान ऊंचा करते हैं, परंतु शक्तियां भी कोई अच्छी तरह से जागे, औरों को कहते हैं ना कि कुंभकर्ण की नींद में पड़े हो, तो अपन सब भी तो नींद में नहीं पड़े, सोए पड़े हैं कहीं। अरे तुमको किस लिए जगाया है? जगाया है औरों को जगाने के लिए। निकल जाएगा कोई और कोई नया अच्छा पैदा हो जाएगा। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 20/9/64 रविवार। रिकॉर्ड चला है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कराना सिखा दिया। ये रिकॉर्ड ने पहले पहले क्या वचन सुनाया, ग्रंथ साहब का वचन लेते हैं ना, तो ये रिकॉर्ड कहता है किसी ने मुझको अपना बना लिया। अगर ये रिकॉर्ड न भी बचे तो भी कोई हर्जा नहीं है, परंतु रमत गमत के लिए, शुरू करने के लिए, और जो भी विद्वान आचार्य पंडित है वो कोई न कोई शास्त्र का कुछ न कुछ शुरू तो करते हैं ना। गीता का, वेदों का, उपनिषद का कुछ न कुछ बात उनकी बुद्धि में रहती है कि जानते हो कि जो भी मनुष्य मात्र हैं उनकी बुद्धि में तो शास्त्र है और तुम्हारी बुद्धि में कोई भी शास्त्र वगैरह कुछ नहीं। तुम बच्चों के लिए और खास करके बुढ़ियों के लिए बिल्कुल ही शास्त्र वगैरह बुद्धि में कुछ नहीं, और जो शास्त्रों की कुछ भी बातें नहीं समझे या कथाएं सुनकर के खुश हुए, या तो पहले पहले खुशी होती है कि हम किसके बने, ऐसे नहीं कोई कहेगा कि जो हमारा गुरु है हम उनके बने, नहीं। पहले पहले बनना किसका होता है? बाप का। शरीर छोड़ करके भी फिर किसका बनना होता है? बाप का बनना होता है। तो देखो यहां तो सिर्फ बाप का बनना है, वेद ग्रंथ शास्त्र वगैरह वगैरह तुम बच्चों को कोई की दरकार नहीं। जब बाप को बच्चा पैदा होता है तो बाप खुद समझ जाते हैं कि मेरी मिल्कियत का मालिक पैदा हुआ। तो वास्तव में यहाँ कोई भी पढ़ने करने जप तप तीर्थ आदि दान पुण्य शास्त्र वगैरह की कोई दरकार नहीं। जैसे कोई राजा है या महाराजा है उनको कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि ऐसे तो बहुत होते हैं ना, बहुत साहूकार भी होते हैं, तो उनको बच्चा नहीं होने से वो बच्चा मांगते हैं। बस बच्चा पैदा हुआ तो वो समझते हैं कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है उनका मालिक आया। इनमें कोई पढ़ाई की तो बात ही नहीं है, ये तो संबंध की बात है। तुम बच्चे भी आए हो, वास्तव में जान गए हो कि हम सच सच पहले भी शिव बाबा के ही हैं, पहले भी पारलोक के बाप के हैं, क्योंकि आत्माएं पहले हैं और ये शरीर तो पीछे है। शरीर हमको बाद में मिलता है, तो अभी तुमको शरीर तो है, पर अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, उसने आकर के अपना परिचय दिया है। तुम बच्चे सिर्फ इतना ही कहते हो कि हाँ हम आपके हैं, तो देखो यहाँ सिर्फ बाप और बच्चे का संबंध है, इसके अलावा और कोई तो संबंध है ही नहीं। फिर उसके बाद जबकि बच्चों को पढ़ना भी हो, पढ़ना भी तो जरूर है, इनको गुरु भी करना है जरूर, क्योंकि ये भारत में कायदा है। तुम जानते हो कि बरोबर हम बेहद के बाप के बच्चे बन गए, नहीं तो यहाँ क्या करते, यहाँ इनके पास रहने की क्या दरकार है। ये कहते हैं कि मैं कोई गुरु गोसाई वगैरह कुछ भी नहीं हूँ, संबंध भी ये है, बोर्ड में भी लगा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो कुमार और कुमारियों का नाम लिखा है ना, बहनों 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 और भाइयों का, तो जरूर उनका बाप है। सो भी लिखते हैं कि हम ब्रह्मा के कुमार कुमारियां, तो ये संबंध हुआ ना, तो पहले पहले संबंध चाहिए, पीछे टीचर चाहिए, गुरु चाहिए, पहले पहले तो माँ बाप का संबंध चाहिए। तो मीठे बच्चे, तुम हमेशा गाते आए हो कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, देखो माता पिता का संबंध तो हो गया ना, तुम माता पिता के जब हम बालक बनेंगे, क्योंकि तो गाते आए हैं समझते हैं, तो फिर जब बाप आएंगे तो हम आपके बालक बनेंगे। देखो ये आत्मा कितना याद करती है, इसको अविनाशी याद है, जैसे भक्ति मार्ग में जब हम बालक बनेंगे तुम माता पिता के, तब तुम्हारे से हम वर्षा लेंगे, और माता पिता से और भी क्या मिलता है, वर्षे की तो बात हो जाती है ना, 20/9/64 की वाणी का दूसरा पेज। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम माता पिता के हैं, भले कोई भी यहां से चले गए हैं, फिर भी उनको बुला करके पूछे ये तुम्हारा क्या लगता है, हैं? इनसे पूछे है? जो यहाँ आकर के चले गए हैं उनसे जाकर के क्या पूछे हैं? तुम जानते हो, बुला करके उनसे पूछे, तुम जानते हो ये तुम्हारा क्या लगता है, ये माने कौन? मंदिर में ले जाके शिवलिंग की तरफ इशारा करे तो फिर भी कहेंगे जरूर ये माता पिता है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। जब बच्चे हैं तो वर्षा याद आना चाहिए। अभी तुमको कोई दूसरी पुस्तक वगैरह तो नहीं पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जाती है कुछ भी नहीं, तुमको सिर्फ ये निश्चय बैठाया जाता है कि जिनके बने हो उनको याद करो, तो उनसे तुमको क्या फायदा होगा। खुद कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से क्या, मेरे को याद करने से कोई प्राप्ति नहीं करेंगे, सारी दुनिया मेरे को याद करती है, कभी कोई प्राप्ति हुई है तब तो याद करती है, बने तो हो ना। तो देखो बहुत थोड़ी सी और सहज से सहज बात बताते हैं, क्योंकि विशाल बुद्धि तो होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ा ही है कि बीज और झाड़ को कोई समझ नहीं सकता है या इन चक्र को कोई समझ नहीं सकता है, और तो कुछ भी नहीं समझाते हैं, सिर्फ अपने ही कुल की बात समझाते हैं कि देखो हम कितनी बड़ी बिरादरी वाले पहले बाबा के बनते हैं। कौन सी बड़ी बिरादरी है? सूर्यवंशी बिरादरी। फिर हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं? ये तो समझ गए हो, नहीं तो दूसरा कोई मनुष्य समझते नहीं है कि 84 के चक्र में कैसे आते हैं। अभी तुम बच्चों को वेद शास्त्र या जो भी तुम आदाकल्प करते आए हो इन सब बातों से छोड़ा देते हैं। तुमको न कोई यज्ञ, न तप, न दान, न तीर्थ, न पुण्य, न संध्या, न वंदन, न गायत्री, कुछ भी करने की दरकार नहीं, क्योंकि तुम तो बाप के बने हो और उनको याद करते करते और फिर सच्चक्र के आदि मध्यंत को जानने से, त्रिकालदर्शी बनने से, हे मेरे लाडले बच्चे तुम इतना ऊंचते ऊंच स्वर्ग का मालिक बनते हो, इतना ऊंचते ऊंच है, इतना ऊंचते ऊंच स्वर्ग है। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है ना, तो स्वर्ग में कितने जन्म होते हैं सतयुग में? सतयुग में 8 जन्म, उससे भी ऊंचा कोई जन्म है? इस संगम युग का स्वर्णिम भाग, जो स्वर्णिम संगम युग का स्वर्ग है, बाप आकर के प्रैक्टिकल में बनाते हैं, तो तुम ऊंचते ऊंच स्वर्ग के मालिक बनते हो। अभी है तो बहुत सहज, तुम जो रोते आते हो तुमको सदैव के लिए हर्षित बनाता हूं। कितनी सहज बातें हैं, इसमें डिफिकल्टी तो कुछ भी नहीं है, परंतु ये सहज बातें भी बच्चों को भूल जाती है। क्या कारण है जो भूल जाती हैं? भूलने की कोई बात तो होनी नहीं चाहिए, माँ बाप को कभी कोई भूलता नहीं है। सो भी ऐसे बेहद के माँ बाप को, बाबा सिर्फ बच्चों को कहते हैं बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, तो तुम सदैव हर्षित रहेंगे। वो गीत का पॉइंट है ना, कौन आया, गाते रहते हैं भक्ति मार्ग में तो गाना ही है। ये जो तुम्हारा है अविनाशी, वो बरस बरस कुछ न कुछ मनाते हैं, दशहरा, दीपावली, रखड़ी बंधन वगैरह, अरे ये तो रोज मनाते आए। आत्मा तो दुख में अपने बाप को याद करती है, दुख में और तो किसी को याद नहीं करते हैं ना, बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप ने जरूर सुख दिया है। और कोई हमको दुख देते हैं तो बाप को याद करते हैं कि हाय बाबा, हाय भगवान, ऐसे ऐसे कहते हैं ना। ऐसे मत समझो इसी जन्म में नहीं, हर एक जन्म में ये हाय हाय करते आए। अभी तो बच्चों को बिल्कुल ही सहज समझाते हैं, भले यहां रहो तो भी समझाने की बात हो गई, भले अगर बैरक में रहना चाहते हो या जो भी गवर्नमेंट के सिपाही बैरक में रहते हैं वो भी तो तंदुरुस्त रहते हैं ना, कभी भी सर्विस कर सकते हैं। तंदुरुस्ती बिगड़ तो सर्विस थोड़ा मुश्किल हो जाती है। भले तुम तंदुरुस्त न भी हो, भले कितना भी बीमार हो, जैसे तुम लोगों के बीमार होने से वो आकर के समझाते हैं कि आराम करो आराम करो आराम करो, तुम फिर क्या करोगे? तुम बीमारी में ही औरों को बताओ कि तुम शिव बाबा को याद करो याद करो याद करो, वो मरते हैं और वो खड़े हैं। तुम जब बीमार हो तो सिर्फ इतना उनको कहो, अरे शिव बाबा को याद करो, मरते मरते भी बोलते जाओ। 20964 की वाणी का तीसरा पेज, तुमको तो कोई याद कराने से छूट गया, तुमको औरों को याद कराना पड़े, याद देना पड़े। मरते समय भी तुम औरों को ये नालिश दे सकते हो कि शिव बाबा को याद करो, बेहद का बाबा है, तुमको वर्षा देगा। और बेहद के बाबा का वर्षा बेहद का वर्षा है, जो कोई भी मनुष्य मात्र इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि नहीं दे सका। तो सर्विस का शौक जब पड़ जाता है तो मरने वक्त भी अगर कोई आएगा पूछने के लिए तो उनको ज्ञान देने लग पड़ेंगे। ऐसी बच्चों की अवस्था चाहिए, लगन चाहिए, ऐसे नहीं कि हॉस्पिटल में मुर्दे की तरह पड़े रहे और मुख बंद हो जावे। क्या कहा है? मुख तो कभी बंद नहीं होना चाहिए ना। मुख से कुछ न कुछ हाय राम राम राम, ये तो भक्ति मार्ग में भी निकलता ही रहता है ना। तो तुम बच्चों की कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, कितनी बुद्धि में ये बात होनी चाहिए कि सिर्फ हमको बाबा ऐसी एक सहज बात समझाते हैं जो चाक हैं, भले चंगे हैं, तंदुरुस्त हैं, बीमार हैं, हम बीमारी में भी बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर सकते हैं। कोई भी मित्र संबंधी आवेंगे हमारी सर्विस करने के लिए, सब तो समझते हैं कि इनको कोई दरकार नहीं है, तो भी वो बेचारे आएंगे तो कहेंगे कि अच्छा प्रभु को याद करो, वही तुम्हारा रखवाला होगा। और क्या तुम्हारा कोई रखवाला हो सकता है? इसलिए ईश्वर को याद करो, प्रभु को याद करो, राम राम कहो। तो फिर उनको क्या समझाना है? वो तो तुम जानते हो कि अपनी बुद्धि में है, मैं तो ज्ञान का सागर का बच्चा हूं। हम तुमको और ही कहते हैं कि तुम शिव बाबा को याद करो, बाबा एक है और वर्षा भी सबको एक ही मिलता है, सुख और शांति का वर्षा है और एक से ही मिलता है, क्योंकि बाप का वर्षा बच्चों को तो मिलता ही है, उसमें भी जो मेल्स होते हैं उनको वर्षा मिलता है, फीमेल्स को नहीं मिलता है। उनको कुछ न कुछ दान किया जाता है तो उसको दान कहते हैं। कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम है क्योंकि पवित्र होती है, तो पवित्र को दान दिया जाता है, सन्यासी पवित्र हैं तो उनको भी दान दिया जाता है, और ब्राह्मण पवित्र नहीं है तो भी उनको दान दिया जाता है। परंतु तुम कन्याएं तो सबसे पवित्र हो, इसलिए बाप माँ तुमको दूसरों को देने के लिए कहते हैं कि हम कन्या को दान करते हैं, कन्या को भी देते हैं तो कन्या को भी दान देते हैं, हमको बहुत बड़ा दान समझते हैं। परंतु इस समय में वास्तव में दान तो होता ही नहीं है, दान तो उस दुनिया की बात नहीं है। कहाँ की बात है? है अभी की बात है। देखो आजकल तुमको बहुत कहते हैं जो गरीब हैं, वो तो बेचारे छूट जाते हैं ना, हम अपनी कन्या ये यज्ञ में शिव बाबा को देते हैं। माता भी कहती है मैं शिव बाबा की बनती हूँ, तो कन्या तो देनी है ना, वहां उस दुनिया में देते हैं कत्लेआम होने के लिए, और यहाँ कन्या दी जाती है स्वर्ग की महारानी बनने के लिए, नरक भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। देखो अगर कोई कन्या दान देते हैं तो कन्या भी ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ी लिखी भी हो। तुम छोटी कन्या तो ले नहीं सकेंगे, कन्या लेनी है जो अच्छी तरह से अपनी कुल की भी हो और उनको समझाने से वो समझती भी जाए, क्योंकि सर्विसेबल तो होनी चाहिए ना। तुमको कोई छोटे बच्चे तो नहीं संभालना है, ना कि तुमको छोटी कन्याओं का कुछ भी लेना है। कन्या आवे जब देखे, जब देखो ये थोड़ी बात में समझ लेती है कि यहाँ का क्या काम होता है, यहाँ तो पढ़ाई जास्ती नहीं है, तुम इतना काम कर सकेंगी तो तुम भी शिव बाबा को याद करो, परिचय दो और उनको कहो कि अभी बाप के वर्षे को याद करो, ये तो जरूर है कि बरोबर बेहद का बाप है। और ये चित्र सामने रख दो, बीस नौ 64 की वाणी का चौथा पेज, ये चित्र बड़ा अच्छा है। हैं तो सभी चित्र एक दो से अच्छे, ये नट सेल में होते जाते हैं, तो उनसे कहो कि देखो ये सतयुग का वर्षा पाए रहे हैं, नहीं तो सतयुग के लिए ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा ये कहां से किसने दिया? श्री लक्ष्मी नारायण को अच्छी तरह से पकड़ो, इसलिए लक्ष्मी नारायण के बड़े बड़े चित्र तुम बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, राधे कृष्ण का भी नहीं लक्ष्मी नारायण का। तो ये भी देखो बैठी हुई है, थोड़ी बात समझाते हैं उनको क्या करना है, क्योंकि अभी तो ये नाटक पूरा होता है और सब बातें भूल जा रहे, ये दुनिया एक नाटक है और इस नाटक में हमने 84 जन्म का पार्ट बजाया है, अभी ये नाटक पूरा होता है हम जाते हैं बाबा के पास, बाबा के पास जाएंगी और फिर नई दुनिया में आएंगी, क्योंकि हमारा बाबा ही नई दुनिया रचने वाला है, नई दुनिया का मालिक नहीं है, वो मालिक है, हमको बनाते हैं, वो हमको उसकी युक्ति उसका मार्ग पाथ कहते हैं ना, तो तरीका बताते हैं कि वेद के बाप से तुमको 21 जन्म का सदा का सुख का वर्षा कैसे मिलेगा। घड़ी घड़ी बैठ करके अपन को ऐसे ही निश्चय करो कि एक तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा खाता हूँ, आत्मा चलता हूँ, आत्मा शरीर को कर्तव्य करा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस तो तुम बच्चों को बहुत बड़ी चाहिए कि तुम आत्मा हो जिससे देवान चूट टूट जावे। जब तुम ये निश्चय करेंगे तो फिर ये निश्चय भी रहेगा कि हम आत्मा किसका बच्चा हूँ। देह अभिमानी को घड़ी घड़ी लौकिक बाप याद आएगा, देही अभिमानी को पारलौकिक बाप याद करेगा। ये भी तो एक कायदा है ना, देह अभिमानी होने से तुमको देह अभिमानी का लौकिक बाप और उनका वर्षा याद पड़ेगा। टूटते बैठते थोड़ी मेहनत है, मैं आत्मा हूँ, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, चलता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप बाबा है, उनकी मत पर चलता हूँ, और ये मत भी वो ही दे रहे हैं, शिव बाबा मत दे रहे हैं कि अपन को आत्मा समझ करके मुझे याद करो, क्योंकि तुमको सुख तो लेना ही है ना, सुख की तो तुम बात ही हो गए, परंतु थोड़े सुख के लिए सेटिस्फाई ना हो जाओ, बस खुश ना हो जाओ कि हम जाएंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। अरे ये तो पाई का भी शक नहीं है कि तुम स्वर्ग में जावेंगे, मम्मा बाबा तो कह दिया ना, परंतु पक्के मातेले बनो है। कौन होते हैं पक्के मातेले है? नहीं, पक्के मातेले माना आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार। सौतेले नहीं बनो, क्योंकि सौतेले और मातेले का यहाँ बहुत समझाया हुआ है। मातेला किसको कहते हैं? जो बिल्कुल ही बाप दादा को याद करे, फिर दूसरे को याद ही न करे। दूसरे याद पड़ते हैं तो सौतेला हो जाता है। देखो यहाँ बैठे बैठे बहुत आते हैं ना, ये भी बाप याद पड़ते हैं, वो भी याद पड़ते हैं, तो फिर एक याद करना पड़ता है ना, दो नहीं। एक बाप जो अविनाशी स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, तो एक के कुल का अपन को समझो, ये भी कुल है, वो भी कुल है, और बाल बच्चे भी सब होते हैं, समझो बिरादरी है, उनसे तो दुख ही मिलता है, अभी तो दुखी ही कहेंगे ना। और आइए, अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख भी क्या, और अभी सुख क्या रखा हुआ है यहाँ, यहाँ तो मौत आया हुआ है सामने, तो ये बुद्धि से जज करना है कि अभी हम किस तरफ जावे। मौत की दुनिया जो भस्म होने वाली है उस तरफ जावे, या जो नई दुनिया सामने खड़ी है उस तरफ जावे, लौकिक की तरफ या पारलौकिक की तरफ, ये भी तो गीत है ना तुम्हारे पास, किसकी तरफ जावे, किसका पात पकड़े। बुद्धि कहती है क्यों नहीं इस बाप द्वारा बाप का बन करके हाथ दे करके हम अपना वर्षा ले लेवे, स्वर्ग की तरफ जावे। वही बुद्धि कहती है कि लौकिक को कैसे छोड़े, क्योंकि यहां तो जीते जी छोड़ना होता है ना। तो तुमको इस समय में जीते जी मरना है। क्या? किसको? हैं? तुमको, इनको नहीं, तुमको जीते जी मरना है, सब कुछ जीते जी छोड़ना है। अच्छा, ओम शांति।